رسوله الكريم. حضرت والا میرے پیر و مرشد میرے شیخ قطب العالم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کا شعر ہے، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خودکشی ہے مال و دولت میں، مگر کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا، مگر کبھی اللہ والوں سے ایسا نہیں سنا جاتا۔ گناہگار اگر خودکشی کر لے تو اس کے قلب کی تباہیاں، بے چینیاں اور بے سکونی کا یہ حال ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ عذاب ہی ایسا ہوتا ہے۔ مال جو ہے وہ اسباب سکون ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ بات سمجھاتے تھے، دیکھے ایک ہے سکون، ایک ہے اسباب سکون۔ اسباب سکون کے لیے، اسباب سکون سے سکون لازم نہیں ہے، ایک علمی بات ہے، اسباب سکون سے سکون لازم نہیں ہے، جیسے شادی سے اولاد لازم نہیں ہے۔ کتنے شادی شدہ جن کے اولاد نہیں، یہ لازم نہیں ہے، اسباب اولاد ہے، یہ ازدواجی رشتہ، اس کا منسلک ہونا، یہ اسباب اولاد میں سے ہے، لیکن اس سے اولاد لازم نشتہ کنا۔ اسی طریقے سے اسباب سکون سے سکون کا حاصل ہو جانا یہ لازم نہیں ہے، اور سکون پہنچنے کے لیے اسباب سکون لازم نہیں، یہ بھی یاد رکھیے، سکون کے لیے اسباب سکون لازم نہیں ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کیا عجیب حضرت کی باتیں ہیں، سبحان اللہ، فرمایا کہ دیکھو ایک شخص ہے، اس کی بیوی مہ کے چلی گئی، اب یہ اس کی جدائی میں رو رہا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، کہ بیوی سے محبت بھی ہے، غیر اللہ کی محبت نہیں کہلائی۔ اب اس غم میں، غم فراق سے یہ سوکھ کر کانٹا بن گیا، کمزور ہو گیا۔ اس کی بیوی پنجاب کی رہنے والی، اس نے وہاں دیسی گھی کھا کے آئی، مثل بھولو بن کے آئی، بھولو پہلوان۔ اب جب یہ اسٹیشن پر اس کو لینے گیا، جب وہ آئی تو خوشی کے مارے جلدی سے ایک طرف لے جا کر، ایک کونے میں لے جا کر لپٹ گیا اس سے، انہیں کونے میں لے جانا حیا کی بات ہے، اور حیا کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ایک کونے میں لے جا کر لپٹ گیا، لپٹ کے جھپی مارنے لگا کہ وہ بھی آگ ہے، دونوں طرف برابر لگی ہوئی، اس نے بھی زور سے جھپا مارا، یہ تو بیچارہ اس کی جھپی، وہ یہ اس کو اپنی جھپی میں نہ لے سکا، اس نے اس کو جھپے میں ہپا کر لیا، اس نے جوش محبت سے وارفتگی سے اس کو دبانا چاہا، نہ دبا سکا، اس نے جو دبایا تو ہڈی کے کڑکڑانے کی آواز نکلی۔ اب یہ جو آواز ہے हड्डियों का कड़कड़ाना बस सबबे तकलीफ के है, सही है, इससे तकलीफ लाजिम है कि ये असबाबे तकलीफ में से है। लेकिन आप बताइए उसको ये तकलीफ महसूस होगी? अब तक असबाब है तकलीफ के, बल्कि वो खुश हो रहा है। साबित करना ये मकसूद था कि सुकून के लिए असबाब सुकून का होना लाजिम नहीं है, बल्कि असबाब तकलीफ से भी सुकून हासिल हो सकता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है। जब एक लैला की मोहब्बत बीवी की जायज मोहब्बत है, उस जायज मोहब्बत का असर ये है कि असबाब तकलीफ से इसको तकलीफ नहीं पहुंच रही, बल्कि वो कह रहा है, उसने कहा बीवी ने कहा माफ करना आपको तकलीफ हुई। अब ये गम फिराक में शायर भी बन चुका था, इसने कहा निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरजू है। तो देखिए सुकून के लिए असबाब सुकून होना लाजिम नहीं, असबाब तकलीफ से भी सुकून मिल सकता है, और असबाब सुकून से सुकून का हासिल होना ये लाजिम नहीं। इसी तरह से याद रखिए माल असबाब राहत और सुकून में से है, लेकिन उससे सुकून का हासिल होना लाजिम नहीं। इसलिए एक आदमी असबाब सुकून जो है असल वो है अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी। अब एक आदमी बगैर असबाब सुकून को अल्लाह ताला को राजी किए हुए, आहमारूमी रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर मेरे शेख रहमतुल्लाह अलैह सुनाया करते थे, उसी को पेश करता हूं। अपने बुजुर्गों की बात बड़ों की बात नकल करूंगा। फरमाया कि आ यकेदर कुंजे मस्जिद मस्तोशाद, एक शख्स मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, अपने गुनाहों पर माफी मांग रहा है और रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, पंखा नहीं है, टूटा हुआ फर्श टूटी हुई चटाई, लेकिन मारूमी फरमा रहे हैं वो मस्त और खुश है। उसके कल्ब की मस्तियों का सुकून का और नूर का आलम ही कुछ और है। और वहां यके दरबाग तुरशो नामुराद, एक शख्स बाग में बैठा है, असबाब सुकून है, फुलवारी है और कोयल की कुकू है, चिड़ियों की चहचहाट है, भीनी भीनी खुशबू है, मुख्तलिफ फूलों की गुलों के रंग बू है, बादे नसीम चल रही है, ठंडी ठंडी हवा है, लेकिन ये शख्स गम में मुब्तला है। नतीजा ये है कि इसको उस असबाब राहत और सुकून में ये खुश नहीं है, वहां बैठा रो रहा है, और ये मस्जिद में बैठा रो रहा है। उसके आंसू दोनों के मुश्तरक हैं, दोनों आंसुओं में इश्तराक है, दोनों के आंसुओं में इश्तराक है, लेकिन एक शख्स वो जो बाग में है उसके आंसू गम के आंसू हैं, और आंसू इसके भी गम के हैं। वो उसके आंसू असबाब खुशी में हैं, लेकिन वो आंसू उसको गम पहुंचा रहे हैं, और इसके आंसू अपने गुनाहों पर नदामत खौफ खुदा से है, इसके आंसू असबाब गम में हैं, कोई राहत नहीं है, असबाब बेसुकूनी है, लेकिन इसके आंसू से इसको खुशी मिल रही है। सुभान अल्लाह, क्या बात है मेरे शेख और मुर्शिद की। फरमाया बस ये हकीकत है, ये हकीकत है। ये सुकून में है और वो बेचैन और बेसुकून है। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अहमक है वो शख्स जो मालो दौलत को असबाब सुकून तो समझे, लेकिन उसको समझे इससे सुकून मिलेगा। दुनिया में इससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। कुछ हजरात है जो एक जगह रहते हैं जहां उनके मकानात बड़े बड़े हैं और जदीद चीजें दुनिया की लगाई हैं, लेकिन उन्होंने इकरार किया हमें सुकून नहीं है। घर तो बड़े बड़े हैं लेकिन सुकून नहीं है, इकरार किया मैंने इस बात। इसलिए हजरत ने समझा दिया अल्लाह ताला की जो नाफरमानी है इससे सुकून मिल नहीं सकता। और अगर कोई बड़ा घर बनाता है जो कि उसकी जरूरत से ज्यादा है, एक होती जरूरत एक होती है राहत, कि चलो एक है जरूरत से बढ़कर राहत की, थोड़ा सा चलो राहत मिल जाएगी, तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े घर बनाना कि खुद भी ना पहुंच सके, ऐसे मकानात, फिर उसमें इसराफ, गुनाह के साथ कि इसराफ वाली चीजें हों, इसराफ की चीजें हों कि जिसका कोई फायदा नहीं। तो ये मकान इबादत के साथ भी सुकून नहीं देगा, क्योंकि इसराफ तो खुद गुनाह है ना। इन्नल मुबर्रिरीन कानू इख्वाना शयातीन, इसको तो अल्लाह ताला ने इस बात को तो फरमा दिया, तो शैतान के भाई हैं, कैसे सुकून मिलेगा। इसलिए दुनिया की मादी चीजों को जरिया सुकून समझना ये दुरुस्त नहीं है। सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है, अल्लाह ताला की इताअत और फरमाबरदारी में है। माल का रखना, उसको जमा करना, उसको अपने हाथ में रखना, वल्ला सुम्मा वल्ला शरीयत इसको बिल्कुल मना नहीं करती, बल्कि मेरे बुजुर्ग हमारे अकाबिर तो फरमाते हैं कुछ रखो हाथ में, फिदाकारी ऐसे मत करो, रखो हाथ में, लेकिन उसको सब कुछ मत समझो कि इसकी वजह से मुझे सुकून राहत और इत्मीनान मिलेगा। नेमत समझ के रखो कि अल्लाह ताला की नेमत है, दीन के काम में इस्तेमाल करेंगे, अपनी जरूरत राहत पे इस्तेमाल करेंगे, किसी मदद में, किसी की मदद करने में काम आ जाएगा, ये तो ठीक है, लेकिन इसको ये मत समझो कि यही सब कुछ है। और हमारा जब तक शानदार मकान ना होगा और मकान में हम ऐसी ऐसी जदीद जदीद चीजें ना लगाएंगे, ऐसी ऐसी डेकोरेशन ना करेंगे, तो उस वक्त तक हमें सुकून और इत्मीनान नहीं मिलेगा। इस चीज से अल्लाह ताला हम सबको पनाह अता फरमाए, और सुकून सिर्फ अल्लाह ताला की याद में है ये। और अल्लाह ताला की ने अपनी याद का तरीका जो बता दिया वो क्या है, शरीयत और सुन्नत पर अमल करें। ये अल्लाह ताला की याद का तरीका है कि शरीयत पर अमल करें और सुन्नत पर अमल करें। शरीयत पे चलेगा तब सुकून सुकून है, सुन्नत में अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि सुकून मिलेगा, अल्लाह ताला की महबूबियत भी मिलेगी। इसलिए सुन्नतों का एहतमाम किया जाए और मसाइल पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला इस चीज की मुझको भी तौफीक अता फरमाए और हम सबको भी तौफीक अता फरमाए। उन्हीं मसाइल में से एक बात यह भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के लिए खास तौर पर यह बात फरमाई, बल्कि नमाजियों के लिए बात फरमाई जो मस्जिद में नमाज पढ़ने को जाते हैं, उनके लिए फरमाया अलैकुम सकीनति वल वकार, कि जब तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाओ, अलैकुम बिसकीनति वल वकार, सकीना यानी सुकून कि इज़्तिराब ना हो, और वल वकार एक न्याना रवि रखो अपनी चाल में, यानी जल्दी जल्दी ना करो कि इज़्तिराबी हालत है, कैफियत है, ऐसी जल्दी जल्दी ना करो, और ऐसे ना करो कि तुम दौड़ते हुए जा रहे हो, और मरीजों की तरह भी ना चलो, दोनों तरफ की चीजों को, इफरात कि ज्यादती कर रहा है, तफरीत की कमी कर रहा है, ये भी ना करे, बल्कि अपनी जो रफ्तार है, दरमियानी जो रफ्तार है, उसको ही दरमियाना रखे कि ना मरीजों की तरह चले, ना बहुत तेज और अकड़ कर। दादा आपने नमाज मस्जिद में जब न जाने को फरमाया तो इस चीज के लिए यही फरमाया कि अलैकुम सकीनति वल वकार, के सुकून और वकार के साथ जाओ। दादा अगर मस्जिद में नमाज तैयार भी है, मस्जिद में जबकि जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुकून और वकार से चलो, तो दौड़ना मना है। ये मस्जिद के आदाब के भी खिलाफ है कि मस्जिद की नमाय नमाज हो और सिर्फ रकात को हासिल करने के लिए या नमाज को हासिल करने के लिए दौड़ा जाए, इसको मना किया गया कि दौड़ो मत, मैराथन रेस मत लगाओ मस्जिद में, बल्कि अपनी रफ्तार से चलते हुए आओ। अगर ज्यादा फिक्र थी तो पहले आते, अगर मान लो कोई उज़्र पेश आया कि ये आदमी मस्जिद में आने का आदी है, मामूल के मुताबिक आता है, कभी कभी आए इन वक्त पर, इस्तिंजा के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, मिस कॉल आना शुरू हो जाती है, तो अब वो बेचारा मजबूर हो गया। ये तबाई चीज है जो कि उसके इख्तियार से बाहर है। अब वो इस्तिंजा करता है पहुंचते और तैयारी करके पहुंचता है तो रकात निकल जाती है, कभी नमाज निकलने का खतरा और खौफ पैदा हो जाता है, पहुंचता है तो आयन बिल्कुल, या कभी नमाज फौत हो जाती है जमात से। लेकिन इसके अंदर यह है कि इसको इसकी वजह से एक दुख और तकलीफ है कि हाय मुझसे नमाज छूट गई। इस दुख और तकलीफ की तर्ज की वजह से वो इस्तिग़फ़ार भी करता है, अल्लाह ताला से माफी मांगता है, रोता है, अगरचे इसके इख्तियार से बाहर थी लेकिन उसने अपने इश्क की अदा दिखा गई कि रोता है, तो इस पर अजर की उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस पर अजर, और अजर नहीं बल्कि बंदा समझता है अजर अजीम अता फरमाएंगे। लेकिन कब, जब उसका दिल भी दुखा हो, दिल में तकलीफ हो। लेकिन बहरहाल मस्जिद में दौड़ना ये तो किसी सूरत दुरुस्त नहीं है रकात के हुसूल के लिए और नमाज में शामिल होने के लिए, ये बेअदबी है, बेअदबी है, इसको मना किया गया है, हौसला शिकनी की गई है, इसकी हौसला अफजाई नहीं है, हौसला शिकनी है कि ये अमल मत करो। फिर एक आदमी जिसके बाल भी सफेद हो गए वो भी दौड़ना शुरू कर दे तो मसले पर अमल करे, मसाइल पर अमल करे, अपनी तबीयत को ना देखे, यही तो बात है सारी। अब देखिए ना, बंदा कुर्बानी करता है, अब कुर्बानी करता है जानवर के गर्दन पर छुरी फेरना, ये तो अपने रुपए पैसे पर छुरी फेर रहा है ना, कि इंसान अपने रुपए पैसे पर छुरी फेर रहा है। अब एक तबीयत है कि इंसान उससे मोहब्बत हो जाती है, बल्कि यूं भी होता है कि जानवर जो पालो कुछ दिन तो मोहब्बत हो जाती है। बचपन याद था, हम इशार करते थे कि भाई जल्दी बकरा ले आओ ताकि उसके साथ कुछ खेले कूदे, जल्दी आ जाता था, उसको बेचारा इतना खिलाते थे कि नतीजे उसमें दुम पे कपड़ा बांधना पड़ता था। लेकिन मोहब्बत ऐसी हो जाती थी इन चंद दिनों में कि इधर उसकी गर्दन पर छुरी फिर रही थी, इधर रो रहे होते थे बैठे हुए, आंसू जारी और रो रहे कि इसको ना काटो। बच्चा बच्चा होता है, लेकिन अब वो कुछ दिन रखने से एक मोहब्बत पैदा हो गई। अब शरीयत कह रही है छुरी फेरो, तबीयत कह रही है ना करो, इस वक्त तबीयत पर शरीयत को गालिब करना यही तकाजा है, मोहब्बत है और तकवा इसी का नाम है, और तकाजा है वफादारी यही है। लिहाजा अगरचे तबीयत भागने की है लेकिन ना भागे। और सुकून से चलते हुए आए और नमाज को मैं सुकून के साथ शामिल होना, ये तरीका दुरुस्त है। तबीयत के खिलाफ करना यही सीखने की चीजें हैं। अल्लाह ताला मुझको भी और हम सबको भी इस पर मसाइल को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने आमाल को सुन्नत के मुताबिक के सुन्नत पर हो। फिर जब उस अमल सुन्नत के मुताबिक होता है फिर उसमें अखलाक आलिया से जब तड़का लगता है तो वो सोने पे सुहागे का काम देता है। अखलाक आलिया का तड़का ये सोने पे सुहागा लगाता है, है ना? नहारी है या पाया है, अब उस पर जनाब हरी मिर्ची का तड़का के लगाया, छिड़काव किया, कुछ धनिया डाला, कुछ जो है वो अदरक डाला, नींबू, तो कैसा उसकी मजा ही कुछ और हो जाता है। तो इसी तरीके से अखलाक आलिया, फिर उसकी हलीम तो हलीम है लेकिन उस पर वो जो मसाला लगता है उसका लुत्फ दुबाला हो जाता है। ऐसे ही शरीयत और सुन्नत पर अमल करना, उस पर अखलाक आलिया हो, माशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझको भी हम सबको ये चीज नसीब फरमा दे। वाखिर दावाना अन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا يا الله تعالى عمنا قبضنا عمنا محمد الله صلى الله وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.